शनिवार दोपहर 1 बजे DoubleTree by Hilton Hotel 5444 Dixie Road जस्ट साउथ ऑफ 401 इन मिसिसागा। अधिक जानकारी के लिए federalauction.ca/mississauga।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
जुलाई 2019 दिन शनिवार, तदनुसार विक्रमी संवत 2076 के आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि। समय सायंकाल के 4:02 हुआ चाहता है। अब से लगभग 1 घंटे तक आपका और हमारा साथ बना रहेगा। दोस्तों, रेडियो भारत की साप्ताहिक कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने प्यारे भारत की, अपने प्यारे हिंदुस्तान की, भारत के इतिहास की, भारत के वर्तमान की और भविष्य की। कुछ गीत संगीत हुआ करता है और कुछ पूरे सप्ताह के विश्व के, भारत के और कनाडा के महत्वपूर्ण समाचारों और घटनाओं पर चर्चा होती है। कार्यक्रम का आरंभ आइए हमेशा की तरह एक बेहद खूबसूरत गीत के साथ करते हैं। आवाज किशोर कुमार की है और फिल्माया भी किशोर कुमार के ऊपर ही गया है, मेरे महबूब कयामत होगी। आज ये आइए ये गीत सुनते हैं और प्रोग्राम का आगाज करते हैं।
मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिल नाकाम से रुख सत होगी। मेरे महबूब मेरे सनम के दर से अगर बादशाह हो तेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब तक भी जिया है शमा तेरा परवाना, जिससे अब तक तुझे नफरत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम, फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब। मेरी तरह तू आह भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे, तूने वो सनम ढाए है सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी नायत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरे महबूब, कयामत होगी आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी मेरी नजरें तो गिला करती हैं तेरे दिल को भी।
सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती और जो ख़त्म हो जाए वो मोहब्बत नहीं होती। किशोर कुमार के इस खूबसूरत गाए हुए गाने के बाद आइए प्रोग्राम का आगाज़ एक खबर के साथ करते हैं। दो खबरें लेंगे हिंदुस्तान से और बड़ी खबरें हैं, और इसके बाद कुछ कमर्शियल लेंगे और एक गाना सुनाएंगे आपको बीच में, और प्रोग्राम इस तरह से इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। रेडियो प्रोग्राम में बात करने के लिए आप प्रोग्राम के बाद 6476400555 पर फ़ोन कर सकते हैं, आप टेक्स्ट कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं avi2912@yahoo.ca पर। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। हिंदुस्तान से बड़ी खबर, कांग्रेस के सीनियर लीडर और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के निधन पर दिल्ली में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। उनकी मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 2 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया। जैसा कि आप जानते हैं और आपको बता भी दें कि शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से शीला दीक्षित जी की मौत हो गई थी। दिल्ली में विकास को 4 चांद लगाने वाली शीला दीक्षित को बीजेपी का अकेला अजेय किला भेदने के लिए भी याद किया जाएगा। दरअसल एक समय दिल्ली को भाजपा का यानी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता था, लेकिन शीला दीक्षित ने न सिर्फ उस गढ़ को ध्वस्त किया बल्कि अपनी सरकार बनाने में भी कामयाब हुई। देश की राजधानी को रिंग रोड और फ्लाईओवर के लिए भी जाना जाता है। ट्रैफिक कम करने में रिंग रोड मदद करती है, जिसे बनवाने में शीला दीक्षित ने अपनी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। शीला जी की रुचि शुरुआत से ही राजनीति में थी। ऐसे में उनकी शादी यूपी के उन्नाव में रहने वाले विनोद आईएएस विनोद दीक्षित से हुई। विनोद और शीला की पहली मुलाकात इतिहास की पढ़ाई के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई थी। उन्हें यूपी की बहू के नाम से भी याद किया जाता है। विनोद के पिता उमाशंकर दीक्षित कांग्रेस के नेता थे। शीला ने अपने ससुर से ही राजनीति के गुर सीखे और वे कांग्रेस कानपुर में सचिव भी रहे। बता दें कि शीला के ससुर अपनी सक्रियता दिखाकर जवाहरलाल नेहरू के करीबियों में से एक हो गए थे। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उमाशंकर दीक्षित देश के गृह मंत्री रहे थे। ट्रेन में सफर करते समय एक दिन उनके पति को हार्ट अटैक आ गया, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। 1991 में उनके ससुर की भी मौत हो गई, जिसके बाद उन्होंने ससुर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। शीला जी के 2 बच्चे संदीप और लतिका हैं। संदीप जी, जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस के एक सक्रिय नेता हैं। राजनीति में सक्रिय होने के बाद जल्दी शीला दीक्षित ने गांधी परिवार के भरोसेमंद लोगों में अपनी जगह बना ली थी। उन्हें इनका इनाम भी मिला और 1984 में कन्नौज के लोकसभा से चुनाव कर वे संसद पहुंच गई। राजीव गांधी की कैबिनेट में उन्हें संसदीय कार्य मंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद कुछ समय तक वे प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री भी रही। शीला दीक्षित जी की मौत भारतीय राजनीति की एक बड़ी क्षति है। बड़ी अच्छी नेता रही हैं, बड़ी मुखर नेता रही हैं, पार्टी स्तर से ऊपर उठ के उन्होंने हमेशा बातचीत की है दिल्ली के देश के हित में। और कांग्रेस की जो भी उनकी जो लेजेंड लेगेसी रही है कांग्रेस पार्टी की, वो उनको बढ़ाने में, उसको बनाए रखने में शीला दीक्षित जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो उनकी इस असामयिक मृत्यु पर हमें दुख है और रेडियो भारत के तरफ से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हिंदुस्तान से भारत से दूसरा समाचार महासचिव, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी को लेकर है। जैसा कि आप जानते हैं, सोनभद्र में जमीन विवाद के मामले में 10 लोगों की हत्या कर दी गई है, बेरहमी से हत्या हुई है। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आखिरकार शनिवार को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में हुए जनसंहार में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात कर ही ली। इस दौरान पीड़ित परिवार प्रियंका से मिलकर रोने लगा। प्रियंका गांधी लगभग 26 घंटे से पीड़ित परिवारों से मिलने की जिद पर अड़ी हुई थी, जैसा कि आपने टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा। शुक्रवार को हिरासत में लिए जाने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। शनिवार को वो मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस में धरने पर बैठी हुई थी। समाचार यह भी आया था कि उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन वहां के डीएम ने कहा कि प्रियंका जी कहीं भी सोनभद्र को छोड़कर कहीं भी आने जाने में स्वतंत्र हैं। सोनभद्र नरसंहार के पीड़ित परिजन प्रियंका गांधी से मिलने सोनभद्र से मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस तक पहुंचे तो प्रियंका गांधी भावुक हो गई। पीड़ित परिवार की महिलाएं अपना दर्द बयान करते हुए रोने लगी तो भावुक प्रियंका ने पीड़िता के आंसू पहुंचते हुए गले लगा लिया। प्रियंका ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और इंसाफ दिलाने का वादा किया। पीड़ितों से मिलने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना धरना खत्म कर दिया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों को कांग्रेस पार्टी की तरफ से 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की गई है। कांग्रेस ने अपने एक ट्वीट में कहा कि यूपी में संवेदनाओं की मौत का खौफ पसरा हुआ है। अजय सिंह बिष्ट आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ का असली नाम है, सरकार इस क्रंदन को नजरअंदाज कर संवेदनहीनता की नई मिसाल पैदा कर रही है। इस विलाप से निकले हर एक आंसू का हिसाब लिए बिना हम पीछे नहीं हटेंगे। ये कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये ट्वीट किया है। और प्रियंका गांधी से संबंधित एक खबर थी जो हमने आपको बताई, साथ में आपको ये भी थोड़ा अपडेट दे दें कि प्रियंका गांधी ने प्रशासन के रवैये के प्रति भी नाराजगी जाहिर की है और चुनार गेस्ट हाउस में दोबारा धरने पर जाकर बैठ गई थी। दरअसल सोनभद्र से पीड़ित परिवार के 15 सदस्य प्रियंका गांधी से मिलने मिर्जापुर पहुंचे थे, जिनमें से सिर्फ 2 को ही मिलने दिया गया और बाकी लोगों को गेस्ट हाउस के बाहर ही रोक दिया गया था। प्रियंका सभी पीड़ितों से मिलना चाहती थी, जिसके बाद वो फिर से धरने पर बैठ गई थी। हालांकि बाद में उन्होंने पीड़ित परिवारों के सभी सदस्यों से मुलाकात की। तो ये 2 बड़ी खबरें थी हिंदुस्तान से। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि एक गीत सुनवाएंगे आपको बीच में, और उसके बाद हम कुछ कमर्शियल्स लेंगे और इस प्रोग्राम का सफ़र हम जारी रखेंगे। दूसरा गीत जो हमने आपके लिए चुना है वो एक और बेहद खूबसूरत नगमा है लता जी और किशोर जी की आवाज़ में, और अमिताभ बच्चन के ऊपर और रेखा जी के ऊपर ये बेहद रोमांटिक जो गीत है फिल्माया गया था। आइए इस गीत का आनंद लेते हैं, उसके बाद कुछ कमर्शियल लेंगे और समाचारों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहिए रेडियो भारत 6476400555 पर।
वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। सांसों में बसी खुशबू तेरी,
ये तेरे प्यार की है जादू तेरी।
तेरी आवाज है हवाओं में,
प्यार का रंग है फिजाओं में,
धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए।
क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए,
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए,
फूल भी हो दरमियाँ तो फासले हुए।
छुपा लूं तुझे मैं बाहों में,
तेरी तस्वीर है निगाहों में,
दूर तक रोशनी है राहों में।
चल अगर न रोशनी के काफिले हुए,
प्यार के हजार दीप हैं जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।
ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो गर्मियाँ तो फासले हुए।
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए।
बेहद रोमांटिक गीत के बाद आइए कुछ कमर्शियल्स की बात कर लेते हैं। डीपी जैन सीपीए सीजीए 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 13 साल से ऊपर कनाडा में उनको प्रैक्टिस करते हो गए हैं। फुल टाइम एक्सपर्ट हैं बिजनेस लोन्स, लाइन ऑफ क्रेडिट्स, कमर्शियल मॉर्गेजेस, बिजनेस कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी, कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट पर्सनल बिजनेस टैक्सेस, कंपनी कॉरपोरेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, सीआरए ऑडिट्स, एचएसटी, पेरोल मैटर्स और अकाउंटिंग की बाकी सभी समस्याओं के लिए आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 416-305-0080। डीपी जैन सीपीए सीजीए 416-305-0080। आप किसी भी अकाउंटिंग की समस्या के लिए या समाधान के लिए आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। आपके ऑटो और होम की और कमर्शियल की इंश्योरेंस के लिए वन स्टॉप सोर्स हैं कोमल भारद्वाज। आप उन्हें 416-262-0414 पर फोन कर बात कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए भी संपर्क किया जा सकता है। अच्छी सलाह और अच्छे कोट के लिए अभी फोन उठाइए और बात कीजिए और एक अच्छा कॉम्पिटिटिव कोट लीजिए। कोमल भारद्वाज 416-262-0414। संजीव मलिक इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, जैसा कि आप जानते हैं, डू नॉट गो फॉर द चीपेस्ट इंश्योरेंस, गो फॉर द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ इंश्योरेंस, संजीव मलिक जी का मोटो है। एक्सपर्ट हैं विजिटर और कनाडा मेडिकल इंश्योरेंस, सुपरविजर इंश्योरेंस, न्यू इमिग्रेट इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस और क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस के भी प्लान इनके पास हैं। ग्रुप बेनिफिट्स में हेल्थ, डेंटल और विजन प्लान्स शामिल हैं। सभी मेजर इंश्योरेंस कंपनीज के साथ डील करते हैं। इंश्योरेंस की सही बात संजीव मलिक के साथ 647-883-4445 आप संजीव मलिक जी से बात कर सकते हैं। पारस चोपड़ा जी 6476801284 पर हम हर बार ये नंबर देते हैं। मॉर्गेज इंटेलिजेंस से संबंध है पारस जी का और कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के सभी तरह के बेस्ट रेट्स के लिए आप इनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्ट्रेस रूल्स कुछ ढीले किए हैं बैंक्स ने, आप अच्छी मॉर्गेज के लिए अच्छे रेट्स के लिए पारस चोपड़ा जी 6476801284 से संबंध स्थापित कीजिए। कमर्शियल रेजिडेंशियल के अच्छे रेट लीजिए। आइए कुछ रिकॉर्डेड कमर्शियल भी सुन लेते हैं और प्रोग्राम में लौटकर वापस आते हैं।
कनाडा आए हुए अरसा हो गया लेकिन अपनी फैमिली को बुलाने की हसरत अभी तक अधूरी है। ब्लू ओशन इमिग्रेशन जो कि स्पेशलाइज करते हैं एक्सप्रेस एंट्री, फेडरल स्किल्ड एंड ट्रेड वर्कर, स्टडी वर्क परमिट, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, सुपर वीजा, विजिटर वीजा, पेरेंटल स्पॉन्सरशिप और अपील्स में। लोकेटेड एट 7895 ट्रेनमेयर ड्राइव यूनिट 211 मिसिसागा। कम टू योर ड्रीम नेशन थ्रू ब्लू ओशन इमिग्रेशन। कॉन्टैक्ट राजीव रामपा फ्रॉम ब्लू ओशन इमिग्रेशन, कॉल 416-500-8036।
यार पिछले 5 साल से बिजनेस जहां था वही खड़ा है,
तो ग्रो क्यों नहीं कर रहा है?
ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए और पैसे तब आएंगे जब ग्रोथ होगी। समझ नहीं आती कहां जाऊं।
बैंक से लोन लो और प्रोग्रेस करो।
बैंक लोन? बैंक तो मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट भी नहीं दे रहा, सिर्फ पेपर वर्क और भाग दो।
फिर टाइम वेस्ट मत करो बॉस, सीधा कनाडा वाइड फाइनेंशियल ग्रुप के प्रमोद गोयल से मिलो और समझो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व।
पर यार,
पर वर्क कुछ नहीं, काम करते हैं चुटकियों में, फीस भी रीजनेबल, लेंगे भी काम होने के बाद। और कुछ
यार, ये थोड़ी देर जरा मेरा काम संभालो, मैं गोयल साहब से मिलकर आता हूँ।
For all kinds of business and commercial loans, call Canada Wide Financial Group 647-699-888, 647-699-888.
कुलभूषण यादव मामले पर भी कुछ नज़र डालते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ में एक बड़ा समाचार है, भारत और पाकिस्तान में दोनों में इस समाचार को अपनी अपनी दृष्टि से देखा जा रहा है। दोनों सरकारें दावा कर रही हैं कि ये हमारी जीत है। कुलभूषण यादव मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में मात खाने के बाद भी पाकिस्तान कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बताने में लगा हुआ है। पाकिस्तान के PM इमरान खान ने इसे अपनी जीत बताते हुए कहा कि वह इस मामले में कानून के तहत आगे बढ़ेंगे। बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बुधवार को जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी और कहा था कि पाकिस्तान अपने फैसले पर फिर से विचार करे। इमरान खान ने ट्वीट करते हुए बोला है कि अप्रिशिएट ICJ's डिसीजन नॉट टू एक्विट, रिलीज एंड रिटर्न कमांडर कुलभूषण जाधव टू इंडिया, इज गिल्टी ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान शैल प्रोसीड फर्दर एज पर लॉ। गुरुवार को PM इमरान खान ने ट्वीट कर ICJ के फैसले का स्वागत किया है। इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि कमांडर कुलभूषण जाधव को बेगुनाह करार देकर रिहा करने और भारत वापस ना भेजने का इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला सराहनीय है। कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा पर ICJ ने बुधवार को रोक लगा दी थी। साथ ही पाकिस्तान को एक बार फिर इस फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस फैसले को दुनिया भर में भारत की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं पाकिस्तान सरकार इसे अपनी जीत बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ICJ के फैसले का स्वागत करते हुए सच्चाई और न्याय की जीत हुई है ये कहा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि हम ICJ के फैसले का स्वागत करते हैं, सच्चाई और न्याय की जीत हुई है। वी वेलकम इन टुडेज वर्डिक्ट इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रुथ एंड जस्टिस हैव प्रिवेल्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द ICJ फॉर अ वर्डिक्ट बेस्ड ऑन एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ फैक्ट्स। आई एम श्योर कुलभूषण जाधव विल गेट जस्टिस, आवर गवर्नमेंट विल ऑलवेज वर्क फॉर द सेफ्टी एंड वेलफेयर ऑफ एवरी इंडियन। बड़ा मामला था और इस मामले में हम आपको थोड़ी डिटेल भी बता दें कि पाकिस्तान जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला जब आया है तो उसे फांसी की रोक लगा दी गई है और उन्हें काउंसलर एक्सेस देने का फैसला भी दिया गया है। बता दें कि पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जबरदस्ती जुर्म कबूल करवाकर मौत की सजा सुनाई थी, जिसे भारत ने चुनौती दी थी। कुलभूषण केस में पाकिस्तान की सैन्य अदालत संधियों और कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया था। पाकिस्तान ने वेना संधि का उल्लंघन करते हुए उन्हें कानूनी मदद नहीं मिलने दी। यादव को उनकी मां और पत्नी से भी सीधे मुलाकात नहीं करने दिया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की 15 सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के दौरान पाक का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने खोल दिया। आइए जानते हैं कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के झूठ को दुनिया के सामने उजागर किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत ने ये 5 दलीलें रखी थी। पहली, अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने के मामले में पाकिस्तान की सैन्य अदालतों का पुराना इतिहास रहा है। दूसरी, वियना संधि के तहत पाकिस्तान ने काउंसलर रिलेशन और राजनीतिक अधिकारों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उसने उल्लंघन किया है। तीसरी शर्त, पाकिस्तान में सैन्य, तीसरी दलील, पाकिस्तान में सैन्य अदालतों की स्थापना 2015 में हुई। 2017 के बाद से अब तक ये अदालतें कई लोगों को फांसी की सजा सुना चुकी हैं। आईसीजे में भारत ने बताया, चौथी जो दलील दी ये बताया कि पाकिस्तान ने जाधव को जबरन अगवा करके उनसे ज़बरदस्ती बयान दिलवाया और फांसी की सजा सुना दी। पांचवी दलील, जाधव को कानूनी सहायता लेने भी नहीं दिया गया, जो कि वियना संधि का सीधे सीधे उल्लंघन है। तो ये 5 दलीलें भारतीय पक्ष ने रखी थी, जिसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मान लिया है। और फिलहाल जो है पाकिस्तान को ये कहा गया है कि आप इसे पुनर्विचार करें, देखते हैं आगे ये केस क्या मोड़ लेता है। फिलहाल दोनों सरकारें अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। पाकिस्तान एयर स्पेस की भी बात कर लेते हैं। पीछे पाकिस्तान एयर स्पेस को सभी प्रकार से नागरिक यातायात के लिए खोल दिया गया है। अब भारतीय विमान पाकिस्तान के ऊपर से यूरोप और खाड़ी देशों की ओर जा सकेंगे। फरवरी में बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान एयर स्पेस पर बैन लगा दिया था। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि तत्काल प्रभाव से पाकिस्तान एयर स्पेस को सभी प्रकार के नागरिक यातायात के लिए खोल दिया गया है। पाकिस्तान ने लगभग 139 दिन बाद एयर स्पेस सोमवार को रात को खोला। एएनआई के एक ट्वीट में कहा गया कि पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी इश्यूज नोटिस टू एयरमैन NOTAM states with the immediate effect पाकिस्तान एयर स्पेस इज ओपन फॉर ऑल टाइप ऑफ सिविल ट्रैफिक ऑन पब्लिश्ड ATS रूल्स routes। तो जितने भी ATS के एयर ट्रैफिक सर्विसेज के राउट्स हैं उनके लिए खोल दिया गया। पाकिस्तान के इस कदम से एयर इंडिया को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि पाकिस्तान एयर स्पेस बंद होने से इंडिया एयर इंडिया को तकरीबन 500 करोड़ रुपए का घाटा अभी तक हो चुका था। अब भारतीय विमान पाकिस्तान के ऊपर से यूरोपियन देश, उत्तरी अमेरिका और खाड़ी देशों की ओर जा सकेंगे। एयर स्पेस बंद होने के चलते ये सभी भारतीय विमान गुजरात के ऊपर से अरब सागर होते हुए पार करते हुए जा रहे थे। आपको ये बता दें कि भारतीय वायुसेना ने पुलवामा हमले के बाद 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविरों पर एयर स्ट्राइक की थी। अगले ही दिन पाकिस्तान के विमानों ने कश्मीर में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, तभी से पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद रखा था। एयर स्पेस बंद होने के दौरान यूरोप और खाड़ी देशों की ओर जाने वाली सभी फ्लाइट गुजरात के ऊपर से अरब सागर पार करते हुए जा रही थी। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को SCO समिट में हिस्सा लेने किर्गिस्तान जाना था, तब तक पाक ने मोदी के लिए 48 घंटे का एयर स्पेस अपना खोला था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पाक एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने यह भी कहा था कि वह अपना एयर स्पेस नहीं खोलेगा जब तक भारत अग्रिम पोस्ट से अपने लड़ाकू विमानों को हटा नहीं लेता। पाकिस्तान के इस फैसले के पीछे बड़ा कारण माना जा रहा है कि एयर स्पेस बंद होने से पाकिस्तान को काफ़ी भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था, जिसकी वजह से उसने एयर स्पेस खोलने की घोषणा की है। तो खैर, फिलहाल तो दोनों देशों की ये घोषणा दोनों देशों के लिए घोषणा फ़ायदेमंद है, क्योंकि पाकिस्तान को भी काफ़ी बड़ा नुकसान था। काफ़ी जो वहाँ से प्लेन निकलते थे उनसे उनका रेवेन्यू आता था, और वो रेवेन्यू पिछले 139 दिनों से बंद था। तो पाकिस्तान की जैसी इस समय आर्थिक स्थिति है, इस तरह के रेवेन्यू लॉस वो अफोर्ड नहीं कर सकता। भारत की जो एयर इंडिया है उनको भी 500 करोड़ से ऊपर का घाटा था। टिकट्स जैसा कि हम जानते हैं हिंदुस्तान जाने वाले महंगी हो गई थी, और जेट एयरवेज भी पीछे जो है वो ग्राउंडेड हो गई, उसके बाद भी टिकट के ऊपर असर पड़ा। दूसरा, एयर स्पेस के कारण भी प्रॉब्लम हुई। तो उम्मीद है कि अब एयर इंडिया की जब फ्लाइट शुरू होगी डायरेक्ट सितंबर में, और जैसा कि कहा जा रहा है, और ये एयर स्पेस खुलने के बाद सभी एयरलाइंस हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को फ़ायदा होगा, यात्रियों को फ़ायदा होगा, और टिकट्स कुछ कमतर आएंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। आइए इन दो पाकिस्तान से संबंधित खबरों के बाद एक खूबसूरत गीत और सुनाते हैं आपको। रेखा जी के ऊपर और लता जी का गाया हुआ ये गीत है, रेखा जी के ऊपर फिल्माया गया था, बहुत खूबसूरत गीत है। आइए सुनते हैं और प्रोग्राम में लौटकर वापस आते हैं। को अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो फिर नाम भी तुझसा रखे। इस बेहद खूबसूरत गीत के बाद हम आपको रेडियो भारत में एक बार फिर से स्वागत करते हैं 6476400555 पर। आप प्रोग्राम के बाद बात कर सकते हैं, अपनी सलाह दे सकते हैं, कोई अगर आपकी क्वेरी है तो भी आप बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि हम तुरंत फ़ोन उठाएंगे, और अगर नहीं उठाएं तो आप मैसेज छोड़ दीजिए, हम आपको जितना जल्द से जल्द हो सकता है वापस कॉन्टैक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए पाकिस्तान से संबंधित दो और खबरों के ऊपर नज़र डालते हैं। दोनों खबरें बड़ी हैं इसलिए हम इसको पाकिस्तान के एक सेगमेंट में, जो हम हर बार कुछ न कुछ बोलते हैं, पड़ोसी देश है हिंदुस्तान का और हिंदुस्तान के मुस्तकबिल या भविष्य के ऊपर वहाँ होने वाली घटनाओं का पूरा पूरा असर पड़ता है, और वाइस वर्सा भी हिंदुस्तान में जो होता है उसका असर भी बहुत हद तक पाकिस्तान पर पड़ता है। तो ये दो खबरें हम जल्दी से लेते हैं और कुछ कमर्शियल लेंगे, फिर एक गीत सुनेंगे और प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है, और गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत यानी जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है। हाफिज सईद लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था, इसी दौरान पंजाब की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने उसे लाहौर से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। गिरफ्तारी के दौरान हाफिज सईद ने कहा, मैं अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। ANI के एक ट्वीट ने कहा है कि जमात उद दावाज हाफिज सईद अरेस्टेड एंड सेंट टू जुडिशियल कस्टडी, पाकिस्तानी मीडिया। मुंबई आतंकी हमले के मामले में विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है कि हाफिज सईद को गिरफ्तार किया गया है। हमें यह देखना होगा कि वे कैसे अदालतों में सबूत पेश करते हैं और उसे दोषी ठहराने के प्रयास कैसे किए जाते हैं, नहीं तो यह सिर्फ एक नाटक ही है। ANI का दूसरा ट्वीट जो उज्जवल निकम ने किया कि उज्जवल निकम के बारे में किया गया कि उज्जवल निकम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन 26/11 मुंबई टेरर अटैक केस ऑन अरेस्ट ऑफ हाफिज सईद, पाकिस्तान इज फूलिंग द वर्ल्ड दैट दे हैव अरेस्टेड हिम, वी हैव टू सी हाउ दे प्रोड्यूस एविडेंस इन कोर्ट्स एंड हाउ एफर्ट्स आर मेड टू कन्विक्ट हिम, अदरवाइज दिस इज अ ड्रामा। जानकारी के मुताबिक 2009 में हुए टेरर फंडिंग के मामले में पंजाब पुलिस के आतंकवाद रोधी विभाग CTD ने उसे लाहौर से गिरफ्तार किया है। CTD ने हाफिज सईद समेत जमात उद दावा के 13 नेताओं के खिलाफ 23 मामले दर्ज किए थे। मामले दर्ज होने के बाद से इनकी गिरफ्तारी तेज हो गई थी। इससे पहले सोमवार को लाहौर की आतंकवादी निरोधी अदालत ATC ने आतंकवादी हाफिज सईद और 3 अन्य को जमानत दे दी थी। यह फैसला मदरसे की भूमि को अवैध कार्यों के लिए इस्तेमाल करने के मामले में लिया गया था। दरअसल पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF से ब्लैक लिस्ट होने का डर सता रहा है। जैसा कि हमने आपको पिछले प्रोग्राम में शायद बताया था कि पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में बड़ी मुश्किल से 3 लोगों के समर्थन से आया था और दोबारा भी ब्लैक लिस्ट में जा सकता है। आर्थिक रूप से खस्ता हाल पाकिस्तान किसी तरह की पाबंदी झेल पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए वह नहीं चाहते हुए भी आतंकवादियों पर अपनी कार्रवाई का दिखावा करने पर मजबूर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UN ने UN सिक्योरिटी काउंसिल ने जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। अमेरिका ने भी अपनी तरफ से वैश्विक आतंकी घोषित करते हुए उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा है। गौरतलब है कि हाफिज सईद ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की साजिश रची थी। भारत ने उसके खिलाफ पाकिस्तान को काफ़ी सबूत भी दिए थे, लेकिन वह हाफिज पर ठोस कार्रवाई करने की बजाय अब तक सिर्फ दिखावा ही करता रहा है। पाकिस्तान से जो बड़ी दूसरी खबर है उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान के पूर्व PM शाहिद खाकान अब्बासी को नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जो पाकिस्तान की एक एस्टेब्लिशमेंट है, और पाकिस्तान के पूर्व मंत्री को उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। एक ट्वीट में कहा गया है कि फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी हैज़ बीन अरेस्टेड बाय नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। अब्बासी को LNG घोटाले से संबंधित एक मामले में कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। अब्बासी को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वे लाहौर टोल प्लाजा से गुजर रहे थे। सभी को रास्ते में गिरफ्तार किया जा रहा है। हाफिज सईद को भी लाहौर जाते हुए गिरफ्तार किया, इनको भी लाहौर जाते हुए गिरफ्तार किया। टोल प्लाजा काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है वहाँ का। उनकी पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी है और अब्बासी को लिक्विफाइड नेचुरल गैस के आयात ठेके मामले में गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो का कहना है कि इस मामले में अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। मुस्लिम लीग के नेता हैं शाहिद खान। अब्बासी और नवाज शरीफ के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। बता दें कि नवाज शरीफ पहले ही जेल में हैं। उन्हें दिसंबर 2018 में गिरफ्तार किया गया है और अल अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। पिछले महीने पाकिस्तान की नैब नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। जरदारी की गिरफ्तारी धन रखने और धन को पाकिस्तान से बाहर भेजने के लिए कथित फर्जी बैंक खातों के इस्तेमाल से जुड़ी हुई है। ये बड़ी खबर है। इनको अगर आप डिटेल में आप संबंधित फैक्ट से अगर आप एनालाइज करें तो ये बड़ी ही बहुत पाकिस्तान के भविष्य को लेकर बहुत चिंता है। अगर इमरान खान अपने इन सब जिन चीज़ों की गिरफ्तारी, जो चीज़ हम कभी सोच भी नहीं सकते थे पाकिस्तान में होने की, उम्मीद है कि इमरान खान सही रास्ते पर जा रहे हैं और अगर वो इन लोगों के खिलाफ अपना पूरा केस पुख्ता बनाने में और उनको अरेस्ट करने में और कुछ पैसा वापस लाने में, या वो नहीं भी लाएं तो कम से कम आगे की भ्रष्टाचार को रोकने में सक्सेसफुल होते हैं, तो पाकिस्तान के लिए इमरान खान की कंट्रीब्यूशन बड़े अच्छे स्तर पर देखी जानी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान को इस तरह का प्राइम मिनिस्टर चाहिए कि जो कम से कम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पुख्ता और ईमानदारी से लड़ाई लड़े। हालांकि इन बड़े बड़े लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ना आसान नहीं है और अभी ये भी नहीं मालूम है कि इमरान खान के हाथ में भी कितना, ऐसा ना हो कि इसके पीछे भी कुछ लोग हों। क्यों, पाकिस्तान कई चीज़ों से कंट्रोल होता है। आर्मी भी अपना टेक रखती हैं, प्राइम मिनिस्टर जो इमरान खान है अपना टेक रखते हैं, पीछे जो ये लोग जो लोग अरेस्ट हुए हैं भुट्टो फैमिली के कुछ लोग हैं और नवाज शरीफ के कुछ लोग हैं, अब ये लोग खगानी साहब भी अरेस्ट हुए हैं। अगर ये सब लोग, एक तरह से आप कहिए कि पिछले बहुत से साल पाकिस्तान का पैसा बाहर जाता रहा और करप्ट रहे हैं ये लोग, तो हैरानी है और बड़ा दुख है पाकिस्तान के लोगों के लिए कि अगर सभी लोग वहाँ पे जो आतंकवादियों को बढ़ावा देती रहेंगी और पैसा आता रहेगा, उस चक्कर में आतंकवादी अपना काम करते रहेंगे और पाकिस्तान के पास जो पैसा इकॉनमी है वो अगर बाहर जाते रहेगा सारा, और जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान के आम लोगों का मुस्तकबिल की उम्मीद लगाते हैं कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, तो ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के लिए। अगर ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएँ तो पाकिस्तान अपनी जो आर्थिक तंगी के दिन हैं उनसे बाहर आ सकता है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा होगा। एक अच्छा पड़ोसी मुल्क जो सक्षम मुल्क है और शांतिप्रिय मुल्क है, वो किसी भी पड़ोसी के लिए अच्छा रहता है। आइए कुछ रिकॉर्डेड कमर्शियल ले लेते हैं और वापस आके कुछ कमर्शियल्स की बात करेंगे और फिर एक गीत भी सुनाएंगे आपको।
कनाडा आए हुए अरसा हो गया लेकिन अपनी फैमिली को बुलाने की हसरत अभी तक अधूरी है। ब्लू ओशन इमिग्रेशन जो कि स्पेशलाइज करते हैं एक्सप्रेस एंट्री, फेडरल स्किल्ड एंड ट्रेड वर्कर, स्टडी वर्क परमिट, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, सुपर वीजा, विजिटर वीजा, पेरेंटल स्पॉन्सरशिप और अपील्स में, लोकेटेड एट 7895 ट्रेनमेयर ड्राइव यूनिट 211 मिसिसागा। कम टू योर ड्रीम नेशन फ्रॉम ब्लू ओशन इमिग्रेशन। कॉन्टैक्ट राजीव रामपा फ्रॉम ब्लू ओशन इमिग्रेशन, कॉल 416-500-8036।
यार पिछले 5 साल से बिजनेस जहां था वहीं खड़ा है,
तो ग्रो क्यों नहीं कर रहा है?
ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए और पैसे तब आएंगे जब ग्रोथ होगी। समझ नहीं आती कहां जाऊं।
बैंक से लोन लो और प्रोग्रेस करो।
बैंक लोन? बैंक तो मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट भी नहीं दे रहा, सिर्फ पेपर वर्क और भाग दौड़।
फिर टाइम वेस्ट मत करो बॉस, सीधा कनाडा वाइट फाइनेंशियल ग्रुप के प्रमोद गोयल से मिलो और समझो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व।
पर यार,
पर वर्क कुछ नहीं, काम करते हैं चुटकियों में, फीस भी रीजनेबल, लेंगे भी काम होने के बाद। और कुछ
यार, ये थोड़ी देर जरा मेरा काम संभालो, मैं गोयल साहब से मिलकर आता हूँ।
For all kinds of business and commercial loans, call Canada Wide Financial Group, 647-699-888, 647-699-888.
इन दो रिकॉर्डेड कमर्शियल के बाद बात करते हैं परवीन दलाल जी, जो सेंचुरी 21 रेड स्टार रियलिटी के साथ हैं। ब्रैम्पटन में इनका ऑफिस है और काफ़ी खासा एक्सपीरियंस रखते हैं प्रॉपर्टी फ्लिप करने में और फाइनेंशियल प्लानिंग में और रियल एस्टेट में। आप रियल एस्टेट के डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं, एक बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टमेंट और उनसे फ़ायदा उठाने के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं। एक्सपर्ट हैं मल्टन एरिया में। फिलहाल इनके पास एक लिस्टिंग है, बड़ी ही खूबसूरत लिस्टिंग है। अगर आप ये घर देखना चाहते हैं और लेना चाहते हैं तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। 4 बेडरूम हाउस है ये, 2 फुल और 1 हाफ वॉशरूम के साथ। एरिया जो है वो मेफील्ड और चिंगूजी का है, जो मेविस आगे चिंगूजी बन जाती है नॉर्थ में जाकर। और ये खूबसूरत इंटरसेक्शन है और हार्डवुड फ्लोरिंग है, क्वार्ट्ज किचन काउंटर टॉप बैक स्पेशल स्टेनलेस स्टील अप्लायंसेस के साथ। लॉन्ड्री है सेकंड स्टोरी के ऊपर ही, वॉक इन क्लोजेट है और काफ़ी अपग्रेड्स हैं इस प्रॉपर्टी में। काफ़ी सुंदर प्रॉपर्टी है और सिर्फ 8,14,900 के ऊपर ये लिस्ट की गई है। आप अगर इसको पजेस करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप 6472695666, एक बार मैं फिर दोहराता हूँ, परवीन दलाल जी 6472695666 पर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और खूबसूरत प्रॉपर्टी के बारे में बात कर सकते हैं। और साथ में ये भी बता दें कि अगर आप रेडियो भारत का उनको रेफरेंस देते हैं तो पहले 5 कॉलर्स को वो तकरीबन 2,000 रुपये का कैश बैक या गिफ्ट वाउचर्स, जो भी आपको सूट करेगा, वो भी देने का उन्होंने वायदा किया है। ये बात उनसे मेरी आज ही हुई है। रेडियो भारत का हवाला दीजिए और एक अच्छी प्रॉपर्टी में अच्छी डील लीजिए। पहले 5 कॉलर्स के लिए $2,000 से उनका जो है वो आपको कैश बैक या गिफ्ट कार्ड्स, जैसा भी आप ठीक समझेंगे, आपको दिया जाएगा। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर संजीव मलिक की भी बात कर लेते हैं एक बार फिर से। डू नॉट गो फॉर चीपेस्ट इंश्योरेंस, गो फॉर द बेस्ट बेनिफिट ऑफ इंश्योरेंस। एक्सपर्ट हैं विजिटर कनाडा मेडिकल इंश्योरेंस, सुपरविजर इंश्योरेंस, न्यू इमिग्रेंट इंश्योरेंस में, लाइफ डिसेबिलिटी और क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस में भी। ग्रुप बेनिफिट्स हैं इनके पास, हेल्थ और डेंटल और विजन प्लान्स हैं, सभी मेजर इंश्योरेंस कंपनीज में डील करते हैं। इंश्योरेंस की सही बात संजीव मलिक के साथ 6478834445। संजीव मलिक से आप बात कीजिए। और डीपी जैन साहब की बगैर फिर से बात कर लेते हैं। 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 13 साल से फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं कनाडा में। एक्सपर्ट हैं बिजनेस लोन्स, लाइन ऑफ क्रेडिट्स, कमर्शियल मॉर्गेजेस, बिजनेस कंसल्टिंग और एडवाइजरी में, कॉम्प्लेक्स कॉरपोरेट पर्सनल और बिजनेस टैक्सेस में, कंपनी कॉरपोरेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, CRA ऑडिट्स, HST, पेरोल मैटर्स और अकाउंटिंग की सभी तरह की समाधान के लिए आप उन्हें 416-305-0080 पर कॉल कर सकते हैं। डीपी जैन साहब 416-305-0080। वन स्टॉप सोर्स कोमल भारद्वाज आपके ऑटो और होम और कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए, ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए भी आप बात कर सकते हैं इनसे। अच्छी सलाह और अच्छे कोट के लिए अभी फ़ोन उठाइए और कम्पिटेटिव कोट लीजिए 416-262-0414 कोमल भारद्वाज। आइए इन समाचारों के बाद एक नगमे की तरफ आपको लेकर चलते हैं। प्रोग्राम अपनी समाप्ति की ओर अपनी रफ्तार से जारी है, लेकिन एक खूबसूरत नगमा आपको ज़रूर सुनाएंगे और कुछ एक दो खबरें कनाडा से रिलेटेड भी लेंगे और प्रोग्राम को समाप्ति की ओर बढ़ाएंगे। रेडियो भारत 6476400555। आइए सुनते हैं।
क्या खूब, जरा देखो तो।
हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया। पतला प्यार ने दोनों से मिटाया न गया। हमसे आया न गया, तुमसे बुलाया न गया। हमसे आया न गया, याद है जब तुमसे मुलाकात हुई। वो घड़ी याद है जब जब तुमसे मुलाकात हुई एक इशारा हुआ दो हाथ बढ़े बात हुई देखते देखते दिन ढल गया और रात हुई वो समा आज तलक दिल से भुलाया न गया हमसे आया न गया तुमसे भुलाया न गया हमसे आया न गया खबर थी के मिले हैं तो बिछड़ने के लिए क्या खबर
ये खूबसूरत गीत आपको प्रोग्राम के अंत में हम सुनवाते चलेंगे और इसी गीत के साथ हम अपना प्रोग्राम भी समाप्त करेंगे लेकिन दो खबर हैं जो मैं थोड़ा जल्दी से लेना चाहता हूं इम्पॉर्टेंट हैं पंजाब में लंबी राजनीतिक उठापटक के बाद नवजोत सिंह सिद्धू कैबिनेट से बाहर हो गए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू का मंत्री पद से इस्तीफा मंजूर कर लिया है अब इसे राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को भेज दिया गया है ट्विटर पर अपना इस्तीफा पोस्ट करते हुए सिद्धू ने लिखा था जैसा कि आप सब जानते हैं व्हाट्सएप पर भी ये इस्तीफा उनका हैंड रिटन जो है काफ़ी चला और उन्होंने लिखा कि मेरा इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी के पास 10 जून 2019 को पहुंच गया था मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल द्वारा यह बताने के बाद कि मुख्यमंत्री कार्यकाल को सिद्धू का इस्तीफा अभी नहीं मिला है सिद्धू ने ट्वीट किया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री को अपना इस्तीफा भेज दूंगा आपको बता दें कि 6 जून को मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में नवजोत सिंह सिद्धू ने स्थानीय पत्रकार को बिजली और नवीन कर की ऊर्जा स्रोत मंत्रालय दिया गया था लेकिन अपना प्रभार उन्होंने नहीं संभाला और उन्होंने कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन ना होने पर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को जिम्मेदार भी ठहराया था और कार्रवाई की मांग की थी सो ओवरऑल उठापटक में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दे दिया और कार्यभार नहीं संभाला है एक खबर कनाडा से ले लेते हैं हमारी कम्युनिटी के लिए ये काफ़ी मुझे नहीं पता हर आदमी इस खबर को अपने ढंग से ले सकता है और जिस तरह से ये लोकल मीडिया में बातचीत भी चलती रही है पीछे कनाडा की मेन स्ट्रीम जो न्यूज़ है वो सीटीवी ने उसने भी और ग्लोब एंड मेल में भी किस तरह की खबरें चली हैं कि जो चाइना और इंडिया हैं वो लोकल कम्युनिटीज़ को कनाडा में आने वाले जो चुनाव हैं उनको यूज़ कर सकते हैं ऑफिशियल वांट चाइना इंडिया कुड यूज़ कम्युनिटीज़ इन कनाडा टू एडवांस एजेंडास ये कुछ फेडरल गवर्नमेंट की टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने वार्न किया है चाइना और इंडिया का इन्फ्लुएंस हो सकता है अपनी माइग्रेंट जो कम्युनिटीज़ हैं उनको आने वाले जो कनाडा में इलेक्शंस हैं और सिर्फ इलेक्शंस ही नहीं इलेक्शंस के बाद भी जो भी गवर्नमेंट आती है या पॉलिसीज़ बनती हैं तो यहाँ जो इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटीज़ हैं उनको यूज़ किया जा सकता है अपने हक में द स्ट्रॉक वार्निंग इज़ इन सीक्रेट in a secret report prepared for deputy ministers attending a retreat on national security last year that also flagged the challenges of preventing foreign countries from launching hostile actions against Canada. Such actions include cyber attacks, spreading the misinformation, and using diaspora communities either directly or indirectly to steal technology, influence elections, and target the Canadian economy and infrastructure. काफ़ी चिंताजनक रिपोर्ट है मुझे नहीं मालूम कि कनाडा की एजेंसीज के पास क्या रिपोर्ट है और क्या इन्होंने ये रिपोर्ट्स या ये चिंता अपनी कनाडा सॉरी इंडिया और चाइना के साथ शेयर की है या नहीं तो लेकिन अगर ऐसा है तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है चाइनीज़ कम्युनिटी के लिए और इंडो कैनेडियन कम्युनिटी के लिए क्योंकि अगर ये चीज़ साबित हो जाती है जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी साइबर अटैक से या किसी उसको फ़ायदा होगा लेकिन ये विश्व पॉलिटिक्स है वर्ल्ड पॉलिटिक्स है और आर्थिक लड़ाई आजकल जो है वो कई तरह से लड़ी जाती है और बड़ी इकोनॉमीज़ हैं कनाडा और इंडिया और मुझे लगता है कि इंडिया और चाइना मुझे लगता है कि कनाडा की ग्रोथ में इंडिया और चाइना का बड़ा हाथ है लोग बहुत आते हैं पैसा बहुत आता है कारोबार बहुत चलता है लेकिन चाइना से रिलेशन अभी ख़राब हैं यूएस भी पूरा तरह से ठीक नहीं है और इंडिया से भी अगर इस टाइप की रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे अभी तो फ्रीज ही हैं तकरीबन तो मुझे नहीं लगता कि उन देशों को यहाँ पर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, लेकिन अगर है भी तो कनाडा को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। हम सब लोग यहाँ रहते हैं और मैंने कम्युनिटी बेस पर तो क्या मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी सरकार के एजेंडे पर चलती हैं। यहाँ ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों की अपनी ज़िंदगी है और अपना अपने ढंग से वो लोग काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की सरकार या चाइना की सरकार अपनी कम्युनिटीज़ को इन चीज़ों के लिए यूज़ करेगी। बाकी खैर अब ये सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट है। सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट तो आप जानते हैं पहले भी आ चुकी हैं और वो एजेंसीज की रिपोर्ट जो हैं वो वापस भी ली गई हैं और उनमें अमेंडमेंट्स भी हुई हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो डिफेंस सिक्योरिटी जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद उसमें काफ़ी जो हमारे सिख भाईचारे ने भी ऑब्जेक्शन की थी और बाकी कुछ लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया था मुस्लिम कम्युनिटी से, तो उसके बाद बहुत से अमेंडमेंट हुए हैं वहाँ पर। और अगर एजेंसीज की रिपोर्ट आती हैं उनके ऊपर कुछ उन्होंने काम किया है या उन्होंने मेहनत की है उस रिपोर्ट को बनाने में, तो वो चीज़ें अमेंडमेंट से कैसे जाती हैं वो मेरी समझ से बाहर है। लेकिन खैर वो एक कम्युनिटी का मामला था, लोगों की आस्था का मामला था, वहाँ अगर हुआ भी है लेकिन यहाँ पर अगर उन्होंने अगर ये चिंता जाहिर की है तो उम्मीद करें कि उनके पास ये चीज़ रही होगी। आइए वो गाना कंटिन्यू करते हैं और प्रोग्राम को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। अगले शनिवार ठीक 4 बजे आपसे फिर मिलेंगे रेडियो भारत में। अरविंद भारद्वाज को आपके होस्ट को आज के लिए इजाज़त दीजिए। 6476400055 पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आइए गाने को कंटिन्यू करते हैं, प्रोग्राम समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।
किस्मतें अपनी बनाई है बिगड़ने के लिए प्यार का बाग लगाया था उजड़ने के लिए, इस तरह उजड़ा के दिल हमसे बताया न गया, हमने आया न गया, तुमसे बुलाया न गया, हमने आया न गया। याद रह जाती है और वक्त गुजर जाता है, याद रह जाती।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
Canada, be ready to witness this November 2019, Pakistan's biggest rock band returns to Toronto after 15 years. After the grand success in Pakistan, UAE, UK and 8 back-to-back concerts in USA, Rehan Siddiqui and GOTV presents Junoon Comeback Tour. Friday, November 1st, CAA Centre, Toronto. Tickets available online, Suleika and Hangama City.
This is Rehan Siddiqui presenting the Junoon Comeback Tour. Only one show in Canada and that also in your city, Toronto. For group tickets, meet and greet, you can call me at 713-545-4115. Aap apni tickets ko select bhi kar sakte hain by going online to ticketmaster.ca. Toronto, don't miss the only show in Canada. An event by Extreme Media.
बिजनेस रन करना मुश्किल है, सो प्रिंटर की प्रॉब्लम से इसे और मुश्किल क्यों बनाएं? फास्टर और स्मार्टर प्रिंट करें अपने नए HP ऑफिस जेट प्रो प्रिंटर के साथ और सब्सक्राइब करें HP इंस्टेंट इंक, कनाडाज ओनली इंक सब्सक्रिप्शन सर्विस जो इंक आपके घर पहुंचाए खत्म होने से पहले। आज ही खरीदें न्यू HP ऑफिस जेट प्रो प्रिंटर और सब्सक्राइब करें HP इंस्टेंट इंक स्टार्टिंग एट $399 a month. विजिट hp.ca या अपने नजदीकी HP रिटेलर।
नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा हलाल फूड फेस्टिवल आपके अपने शहर टोरंटो में जुलाई 20 और 21 द इंटरनेशनल सेंटर मिसिसागा एंट्रेंस 5। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 647-286-5727 647-286-5727।
GT20 and Bombay Sports present the great singer Guru Randhawa live in concert. 24th July, 7:30 PM at Pearson Convention Center at Steeles and Airport. Tickets start from $45. और इसके साथ GT20 टूर्नामेंट की ग्रैंड ओपनिंग हो रही है और आ रहे हैं युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल, वसीम अकरम एंड लॉट मोर प्लेयर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. द क्रिकेट वर्ल्ड इज कमिंग होम. फॉर टिकट्स कॉल अमर शमसी 416-662-7861, दैट इज 416-662-7861 और विजिट ticketwindow.ca.
ग्रैंड ऑक्शन ऑफ ब्राइडल ज्वेलरी सिर्फ मिसिसागा में इस रविवार दोपहर 1 बजे फेडरल ऑक्शन एक शानदार ब्राइडल ज्वेलरी ऑक्शन करने जा रहा है.